संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। सभी भक्तों को प्रणाम। भक्तमाल श्रृंखला में आज का चरित्र करते हैं श्री परशुराम जी का। श्री राधेश्याम राधेश्याम राधेश। ब्रह्मा जी के पुत्रों में एक थे कुश। कुश के हुए कुशनाभ, और कुशनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, उससे गाधी जी का जन्म हुआ। गाधी जी चक्रवर्ती सम्राट हुए, और गाधी जी की एक पुत्री हुई सत्यवती। सत्यवती का विवाह उन्होंने ऋचिक मुनि के साथ में किया। ऋचिक मुनि बड़े तपस्वी मुनि थे, सब कार्य सिद्धि करने में समर्थ थे। तो एक दिन सत्यवती और सत्यवती की माँ ने ऋचिक मुनि से प्रार्थना की कि हमें पुत्र रत्न प्राप्त हो। तो उन्होंने एक यज्ञ से चरु निकालकर दोनों माँ बेटी को दे दिया, सत्यवती को भी और अपनी सास को भी। अब दोनों जब चरु खाने लगी तो सत्यवती की माँ ने सत्यवती से कहा कि देख, हर कोई ये चाहता है कि उसका पुत्र श्रेष्ठ हो, अपने सास के पुत्र को कोई श्रेष्ठ नहीं चाहता कि वो हो। तो इसलिए तुम्हारे पुत्र में तो श्रेष्ठ गुण होंगे, क्योंकि तुम्हारा पति चाहेगा कि उसके पुत्र मेरे पुत्र से श्रेष्ठ हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पुत्र को संभालना है समस्त राज्य, वो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और तेरा पुत्र होगा सिर्फ एक साधारण सा ऋषि मुनि। तो एक ऋषि मुनि तो जैसा भी हो चल जाएगा, तो ऐसा कर चरु बदल ले, तेरा श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्राप्त हो जाएगा, और मेरा जो साधारण सा पुत्र होगा वो ऋषि मुनि बन जाएगा तेरा। उसे भी माँ की बात ठीक लगी कि हाँ ये भी बात ठीक है। उसने चरु बदल लिया आपस में, उन्होंने चरुपान किया। और रात में जब ये आश्रम में कुटी में आई सत्यवती, तो ऋचिक मुनि को बता दिया इन्हें कि हमने चरु बदल लिया था। उसने बोला तुमने क्या कमाल कर दिया चरु बदल का, ये तो बहुत गड़बड़ कर दी तुमने। बोले क्या हुआ? बोले कि मैंने तुम्हारी माँ को जो चरु दिया था वो एक घोर योद्धा का दिया था, वो बहुत बड़ा योद्धा होगा और घोर प्रवृत्ति का होगा, और जो तुम्हारा पुत्र होगा वो मैंने दिया था कि बहुत शालीन और सभ्य और तपस्वी पुत्र होगा। और अब तो उल्टा हो गया सब, तो उसका पुत्र तो होगा तपस्वी जो तपस्या करेगा, तुम्हारा पुत्र घोर प्रवृत्ति का और जिसमें राजा के सारे गुण हो ऐसा होगा। तो कहने लगी नहीं महाराज, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो एक तपस्वी पुत्र ही चाहिए जो आपकी तरह सन्यासी और तपस्वी हो। तो वो कहने लगी ठीक है, जब बहुत प्रार्थना सत्यवती ने की तो ऋचिक मुनि ने कहा कि ठीक है, जो चरु के गुण हैं वो तेरे पौत्र में होंगे, तेरा पुत्र एक ऋषि ही पैदा होगा। तो ऐसा ही हुआ, सत्यवती का पुत्र हुए यमदग्नि ऋषि। यमदग्नि ऋषि बहुत तपस्वी ऋषि थे और सर्वसमर्थ थे, वो कुछ भी वरदान देने में भी समर्थ थे। उन्होंने अपने आप को पूर्णतः साध लिया था। उन्हीं यमदग्नि ऋषि के 8 पुत्र हुए, उनमें से 8वें पुत्र थे श्री परशुराम जी, जो घोर प्रवृत्ति के हुए, जो महान योद्धा भी थे और घोर प्रवृत्ति के थे। और इधर इनकी जो सास थी उनसे जो पुत्र हुए वो विश्वामित्र हुए, तपस्वी। वो राजा हुए, लेकिन राजा भी कैसे, तपस्वी राजा। उनकी कथा अगले चैप्टर में करते हैं, अभी हम परशुराम जी की कथा करते हैं। तो परशुराम जी घोर प्रवृत्ति के तो थे, लेकिन उनमें तपस्या के भी गुण थे, बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। एक दिन क्या हुआ कि यमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका, ये जल लाने गई हुई थी नदी में। नदी पर जब जल भर रही थी तो वहाँ पे इन्होंने देखा गंधर्व और गंधर्वणियाँ आपस में विहार कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। जल विहार देख के ये जल भरते भरते रुक गई और उन्हें देखने लगी। जब उन्हें देख रही थी तो इसके अंदर काम संचरित हो गया, काम विकार आ गया। काम विकार हो गया तो इसे वहाँ पे उनका विहार देखते देखते काफ़ी देर हो गई। जब इन्हें याद आई ऋचिक मुनि की तो ये वहाँ से लौट के जल्दी जल्दी में आई। ऋचिक मुनि ने पूछा देर कहाँ हुई, तो ये चुप हो गई। इन्होंने अपनी तपस्या के बल पे से देखा तो इन्हें देखा कि वो तो गंधर्व पे मोहित हो गई थी वहाँ पे। तो इन्होंने कहा दुष्टा, तूने पाप कर्म किया है। वहाँ पे सारे पुत्र बैठे हुए थे, उन्होंने एक एक करके सबको आज्ञा दी कि अपनी माँ को मार दें। प्रथम को कहा, द्वितीय, तृतीय, सातों ने, पहले सातों ने मना कर दिया, हम नहीं मार सकते अपनी माँ को। फिर इन्होंने परशुराम जी को कहा अपनी माँ को मार दे और इन सातों पुत्रों को भी मार दे। तो उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, सातों को खत्म कर दिया और अपनी माँ को भी मार दिया, उनकी भी गर्दन काट दी, सातों मर गए। पिता प्रसन्न हुए यमदग्नि ऋषि की, वाह पुत्र हो तो ऐसा, पिता की तुरंत आज्ञा मानता है। पर उन्होंने ये इसलिए किया, ये जानते थे कि ये समर्थ हैं ऋषि, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को जीवन दान दे सकते हैं। उन्होंने कहा मैं खुश हूँ, वरदान मांग। उन्होंने कहा इन सातों को और मेरी माँ को भी जीवित कर दो, पर इन्हें ये पता ना रहे जीवित होने के बाद कि मैंने इन्हें मारा था। बस एक वरदान तो मुझे ये दो और एक वरदान और चाहिए। बोला क्या? बोला मैं युद्ध में किसी से परास्त ना हो सकूं, मुझे ऐसा वरदान और दे दो। बोला तथास्तु, जाए ऐसा ही होगा। वो सब उठ के खड़े हो गए, किसी को पता नहीं चला कि परशुराम ने हमें मारा था। तो ये परशुराम जी थे। अब इनके युद्ध की प्रतिभा ऐसी हो गई है कि अपने पिताजी से वरदान ले लिया कि मैं युद्ध में किसी से परास्त ना हूं। अपनी तपस्या के लिए भी जाते, जंगल में लकड़ी काटने जाते, पिता की खूब सेवा किया करते। इधर सहस्रबाहु अर्जुन थे, महिष्मति के राजा थे और ये घोर प्रवृत्ति के थे। ये भी इन्होंने दत्तात्रेय भगवान से वरदान लिया था कि इन्हें भी युद्ध में कोई परास्त ना कर सके, और इनके हजार भुजाएं, इन्होंने वरदान लिया था हजार भुजाओं का, तो इनकी हजार भुजाएं थी। ये एक बार में 500 धनुष पे बाण चला के एक साथ संधान कर दिया करते थे हजारों भुजाओं से। तो इनके सामने सही में युद्ध में कोई ठहर ही नहीं सकता था। उस टाइम इन्होंने दूर दूर से बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया, कोई इनके सामने युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। जिसे पता चल गया कि सहस्र अर्जुन सामने खड़ा हुआ है, वो हथियार डाल के भाग जाया करते थे रण में से, ऐसा इसका नाम था। तो एक दिन इसने समुद्र का रास्ता रोक लिया, चट्टान पत्थर गिराने शुरू कर दिया और आतंक मचा दिया समंदर में। समंदर प्रकट हुए, ये वो समंदर से बोलने लगे युद्ध कर मेरे साथ, तेरी तो बहुत बड़ा विशाल है समंदर, समंदर युद्ध कर। वो कहने लगे महाराज मैं समर्थ नहीं हूँ आपसे युद्ध करने। बोलो तो मुझे कोई ऐसा योद्धा बताओ जिसके साथ युद्ध करूँ, खुजली हो रही है मेरी भुजाओं में, मुझे योद्धा चाहिए ऐसा। उन्होंने कहा तुम्हें जो युद्ध में सामना, तुम्हारा जो युद्ध में कर सकता है वो यमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं परशुराम, सिर्फ वो ही तुम्हें शांत कर सकते हैं युद्ध में। तो ये खुश हो गए कि वाह तुमने सही बताया, हम जाएंगे अभी और परशुराम से युद्ध करेंगे जाके। तो ये अपने राजबल लेके, राजदल लेके सब निकल पड़े और ये जंगल में जहाँ गए यमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गए। आश्रम पर गए तो वहाँ पे कामधेनु गाय थी, वो गाय सब कुछ देने में समर्थ थी। इतने सारे लोग एक साथ आए तो यमदग्नि ऋषि ने देखा कि भाई अतिथि लोग आए, इनका सत्कार करना चाहिए। उन्होंने जो जो वस्तुएं उनसे चाहिए कामधेनु से, उन्होंने सारा सत्कार उनको वैसा ही किया। ये देख के वो भूल गई कि उनके साथ युद्ध करना है। उन्हें देखा रहे यार ये तो हमसे भी ज़्यादा ऐश्वर्य है इनका, तो ये किस ऐश्वर्य में, ये जो चाहे वो प्रकट हो जाता है इनकी। इन्होंने कहा भाई ऐसा करो, मांगा नहीं उनसे, बोलो इसकी ये गाय खोल लो, ले यार चलो अपने राजमहल में। उन्होंने बहुत कहा महाराज एक सहारा है हमारा जंगल में गाय, ये तो हमने सिद्धि से प्रकट की है। बोला अरे तुम हटो, तुम सिद्धि विद्धि तुम्हारी, और अपने पुत्र को बोल देना बहुत ज़्यादा अकड़ है ना उसमें अगर युद्ध करने गए तो हमसे युद्ध कर ले और अपनी गाय ले जाएगा आके बोल देना। ये लेके गाय चले गए, परशुराम जी आए। परशुराम जी को पता चला कि वो ज़बरदस्ती खोल के लेके गया है। यमदग्नि ऋषि ने समझाया भी कि जाने दो राजा है छोड़ो, बोले ऐसी कैसी राजा है तो क्यों, बहुत समझाया इन्होंने। बोला ठीक है पिताजी मैं आराम से जाऊँगा, आराम से ले आऊँगा, आप टेंशन ना लें। ये गए वहाँ पर, इनको तो क्रोध आया हुआ था कि मेरे पिताजी की ऐसे घोर बेइज्जती की है, उनका अपमान किया है तुमने। इन्होंने अपना फरसा लिया, कुल्हाड़ी ली और घुस गए और इन्होंने भयंकर, इन्होंने सिर्फ जाते ही उनकी सेना को काटना शुरू कर दिया, जो भी मिले रास्ते में काटना शुरू किया। बहुत सारे उसके पुत्र मार दिए, बहुत सारी सेना तहस नहस करते हुए चल रहे थे, खून की नदियाँ बहते चल रहे थे, परशुराम ललकारते चल रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सामने से जब सहस्रार्जुन अर्जुन को सुना, सहस्रार्जुन अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेके युद्ध में आ गया। युद्ध में आ तो घोर संग्राम हुआ, घोर संग्राम ऐसा दोनों तरफ से दो पर्वत खड़े हुए हुए, परशुराम जी भी ऐसे ही और इधर सहस्रार्जुन भी ऐसे ही, घोर संग्राम दोनों में होने लगा। युद्ध पे युद्ध उनके चलने लगे, दोनों अस्त्र शस्त्र काटने लगे और ऐसे करते करते परशुराम जी ने उसकी सारी भुजाएं, हजार की हजार भुजाएं काटी, उसका सर काटा वहीं पे, सर काट के उसको वहीं उसके राज्य को मिट्टी मिला के निकल के वो आगे अपनी गाय ले करके। जब वो आए उसके पिता ने देखा कि वो खून से लथपथ हैं, ये इनका बुरा हाल हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुमने कितना बुरा कि तुमने राजा को मार दिया और इतने लोगों को तुम वो करके आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम तपस्वी के पुत्र हो। ये कहने लगे कि तपस्वी के पुत्र हैं तो क्या, कोई किसी का अपमान करेगा तो सहन करेंगे हम। ये वो घोर प्रवृत्ति के चरु का असर आ गया है इनमें और ये भगवान के अंशावतार भी हैं। तो बोले कि हम तो नहीं सहन कर सकते, हमारे सामने कोई आएगा मार देंगे ऐसे ही, हम नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने समझाया भी कि तुम ऋषि के पुत्र हो, बोला ऋषि के पुत्र हैं तो क्या हो गया, कोई अपमान करके चला जाएगा क्या हमारा। खैर ये समझे नहीं अपने पिता की बात और ये चले गए, जंगल में चले गए। फिर से जैसे जंगल में अपना चला जाते थे नित्य क्रिया करने गए। उधर सहस्र अर्जुन के पुत्रों को पता चला कि भाई इतना संहार हो गया है, जो पुत्र राजमहल में नहीं थे तब वो भी आए, कुछ और जो राजमहल में जो पुत्र बच गए थे वो सब इकट्ठे होकर फिर आश्रम पर आए। आश्रम पर आए तो उन्हें देखा कि परशुराम तो यहाँ है नहीं, तो क्यों ना बदला ले लिया जाए। उन्होंने ऋषिक मुनि की जो तपस्या में बैठे हुए थे उस टाइम ध्यान कर रहे थे, भगवान का ध्यान करते उनकी गर्दन काट के ले के चले गए वो उनकी, कि जैसे हमारे पिता की गर्दन काटी हमने तुम्हारे पिता की गर्दन काट ली। अब इनकी माँ चिल्लाने लगी, उसने छाती पीटी कि हाय परशुराम हाय परशुराम। परशुराम को ये आवाज़ सुनाई दी तपस्या के बल पे जंगल में कि मेरी माँ चिल्ला रही है हाय परशुराम हाय परशुराम। वो दौड़े वहाँ से जंगल से, जंगल से दौड़े आके देखते हैं कि पिताजी का तो धड़ धड़ है, सर ले गए वो काट के। इनको बहुत क्रोध आ गया और ये माँ को बोले कि तुम रुक। अब उसकी माँ ने 21 बार नाम पुकारा था छाती पीट के, इसने शपथ ली कि मैं इनको ख़त्म करूँगा, इनका समूल विनाश करूँगा। वो गए, उन्होंने पूरे राजमहल में जाके कोई नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। फिर उन्होंने पूर्ण अक्षत्रियों को नष्ट किया, जो थोड़े बहुत बचे अक्षत्री इनको ये हुई संतुष्टि कि मैंने सबको ख़त्म कर दिया। वो धीरे धीरे और सारा जो जितना राज्य था वो सब ब्राह्मणों को दे दिया इन्होंने, उनका सबका, सहस्र अर्जुन का जितना भी राज्य था सब ब्राह्मणों को दान करके ये अपना फिर जंगल में अपना वो करने लगे, निवास करने लगे, तपस्या करने लगे। इन्होंने निवास करते हुए समय व्यतीत हुआ, इधर जितने ब्राह्मण थे वो राज्य कर रहे थे, कुछ क्षत्रिय फिर बड़े हुए। क्षत्रिय बड़े हुए तो उनको पता चला कि भाई राज्य हमारा था, उन्होंने ब्राह्मणों को अपने यहाँ आतिथ्य के लिए बुलाना शुरू कर दिया। तो इनके यहाँ ये राजा होकर के भी इनके यहाँ अतिथि बनके आतिथ्य स्वीकार करते और भोजन करने जाते, जीमते उनके यहाँ पे जा करके धीरे धीरे बहला फुसला के उन्होंने और राज्य पे फिर अधिकार कर लिया। जब परशुराम जी को पता चला कि फिर से क्षत्रिय राजा हो गए हैं और वो फिर घोर कुकर्म कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर से उनको नष्ट किया। ऐसे ही ये बार बार इन्होंने 21 बार इनकी मां ने छाती पीटी थी, इन्होंने पूरे 21 बार ही क्षत्रियत्व को पूरा ख़त्म किया, सारे क्षत्रियों को ख़त्म किया, संहार किया। लेकिन जो बच जाते थे वो फिर राज्य छीन लेते। जब 21वीं बार भी इन्होंने राज्य ख़त्म कर दिया तो इनको बहुत गुस्सा आया परशुराम जी को कि ये ब्राह्मण कैसे हैं, मतलब इनको शर्म नहीं आ रही है कि हम इनको राज्य देते हैं और ये फिर उन्हीं क्षत्रियों के जाके जीमने लगते हैं, उन्हीं के यहाँ खाने लगते हैं, उनके बहवक कावे में आके वो राज्य हड़प कर लेते हैं। फिर इन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम भिक्षुक हो, भिक्षुक ही रहोगे, तुम कभी राज नहीं कर पाओगे, राज करने की प्रवृत्ति नहीं है तुम्हारी। ये कह के 21वीं बार इन्होंने कश्यप जी को सारा राज्य सौंप दिया कि इस बार हम किसी और को नहीं देंगे, कश्यप जी। कश्यप जी को उन्होंने सौंपा तो कश्यप जी पहले से ही चाहते थे कि क्षत्रियों का ऐसे विनाश ना हो, क्योंकि धरती पे सबको रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब आप दक्षिण में चले जाइए, आपका काम खत्म हो गया, अब आप ये संघार नहीं करेंगे। तो ये दक्षिण में मंदराचल पर्वत की ओर चले गए और ये तप करने लगे। ये रामावतार में आए, रामावतार में जब धनुष टूटा तो राम जी के सामने जब ये पधारे तो दर्शन किया राम जी का, राम जी का दर्शन करके इनका जो अंशावतार था उसका प्रभाव खत्म हुआ और भगवान श्री राम जी ने इनको आज्ञा दी तपस्या करने की। तो ये तपस्या आज भी ये तपस्या कर रहे हैं और अगले मनवंतर में सप्तऋषि मंडल में ये शामिल होंगे, जैसे कृपाचार्य जी शामिल होंगे, अश्वत्थामा शामिल होंगे, ऐसे ही इनको भी ऋषि मंडल में, सप्तऋषि मंडल में शामिल किया गया है अगले मनवंतर के लिए। तो ये परशुराम जी की कथा थी, अगले एपिसोड में हम सुनते हैं विश्वामित्र जी की कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय, भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की जय, श्री राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।